ता जैसे अधरंग जिसे किसी ने मार जा उसकी हालत देख बेचारे की अपाज हो रहे हैं उनको देखना हो किस प्रकार टट्टी हो से क्यों कर खाव से किस प्रकार बैठ पाव से। कबीर राम नाम जाना नहीं यो पाल्या सकल कुटुंबे धंधे ही मैं पच मरिया बार हुई ना बम्बे। कबीर राम नाम जाना नहीं होगा बहुत अकाज डूबेगा रे बोह पड़ा इन बड़े बुढ़ों की लाज। कबीर राम नाम जाना नहीं बात बिनोठी मूले अरसा में तो बिसारिया अंत पड़ी मुँह धूरे। कबीरा या संसार में गणे मनुष्यमतिहीन राम नाम जाने नहीं आए टापा दीने। कबीर राम नाम जाना नहीं लगी मोटी खोरी काया हांडी काट की ये ना चढ़ बहोड़ी। अब या शरीर की यो काट की हांडी से एक बार चूल्हे पर धर लिया यानी राम नाम पर ला गया तो ठीक से ना या फिर दोबारा बांटना देखिए इसमें फिर धर दूंगा इसमें खत्म हो जाएगी बर्बाद हो जाएगी। कबीर क्या किया हम आय के कबीर क्या किया हम आय के कहा करेंगे जाए इत के रहे ना उत के चले जुन्म गवाए। कबीरा वो दिन याद करे ऊपर पग पग ऊपर तलसी से और मृत मंडल में आहक तू बिसर गया जगदीसे। कबीरा वो दिन याद करे तेरे पग ऊपर से तलसीस मृत मंडल में आके भूल गया जगदीश। कबीरा हरि के नाम बिना ये राजा रस हो मट्टी लद कुमार घास न नीर कोई। कबीर हरि के नाम बिना ये नार को करी हो गली गली भौंकत फिरे टोक न डाले को। या औरत आज से पटरानी हो कुतिया की जुनी में जागी जो ईश्वर नहीं बचती। राजा है भगवान के नाम के बिना रस्य होगा अच्छा बड़ा खच्चर जो दुगना माल बोरम गलवा के चल जा करे। कबीरा पानी हौज का यो देखत गया बिला ऐसे जीव तेरा जन्म जावे दिन दस ढोले लाए। जैसे कितना भारा जोड़ भरा हो नो पता भी नहीं चलता यू कद खत्म हो गया सहज 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 वो पांच छह फुट रित जैसे और रित दे का खत्म होते का निशान भी नहीं बनता। इसी प्रकार ये तेरा मनुष्य शरीर प्रतिदिन एक सांस बाण सा उदड़ रहा है। कबीरा सांस नगारा कूच का और बाजत है दिन रैन ये दिन रात्रि यानी मौत की तरफ जान का सांस एक सांस खत्म होया आपकी उम्र घटगी दूसरा गया उसमें घटगी। इसी प्रकार एक दिन गया एक दिन के बाद हफ्ता गया महीना गया वर्ष गया और वर्ष गए अब वो दिन भी आने वाला से जिस दिन वो कहेंगे उठाओ भाई फू क्या हो। तो कहते हैं अपनी मौत की तरफ जावे और खुश दूना हो रहा क्यों बच्चे बढ़ गए जायदाद बढ़ गई थोड़ा थोड़ा सा व्यवस्था ठीक होगी घर में रहने की। तो इबनो कहे अग तेरे मात मन्यारी हुए ना जब मारा बाबू ने कुछ भी ना दिया था इमन न्यो बना दिया मन न्यो बना दिया पांच किले ले लिए एक मकान बना चौड़ा होकर बैठा से यू तो बना लिया पर जो बनाने का था वो तो ना बनाया बीरा ये तो कुछ भी ना बनाया। पाछे न्यो कहे वो मंदिर खाली पड़े जिनमें बसन लागे काग जो किले बना कर चले गए वो हवेली जिनका नाम लिया जाता था गामा में तीन तीन मंजिली बना रखी थी बड़े बड़े सेठ साहूकारा ने आज उनमें कुतिया ब्यावस है, वह ढूंढ पोए बैठे से। इसी प्रकार जो व्यवस्था तू बना कर जा रहा है, ये 10-20-50-100 साल के बाद कुछ भी ना होगा, ढारा हो जाएगा। और तो फिर उस समय आगे बैठा मन माने कुत्ता बनकर और कुतिया बनकर, क्यों ममता वहीं फड़ी रहेगी, जहां आशा तां बासा होई, वहीं तेरे को फिर बना दिया जाएगा। अब कहते हैं कबीरा ये तन जात है, सके तो ठहर ला, कैसे वा कर साधु की कै गोविंद गुण गा। इसके दो तरीके हैं और दोनों करे। कबीरा ये तन जात है, सके तो ठहर ला, इसका बचाव है कत संता की सेवा करे और साथ में भगवान का गुण भी गावे, दोनों काम करने पड़ेंगे। इसमें कहते हैं कबीर ये तन काचा कुंभ था, तू लिया फिरे था साथ, और ठबका लग गया फूट गया तेरे कुछ ना आया हाथ, रोआ पीटी रह जाती है फिर कुछ नहीं से। कबीर दुनिया के धोखे मरिया, चलिया कुटुंब की काने, जब यो कुल के कर लेगा जब ले जा धुन मसान। आज ते भाई चारा क्यों कहेगा सत्संग में जा, भाई ये थोड़े मुंदे पड़े से, नो कह काल तन पकड़ के टीट भी काल ले जाएगा, वो भाईचारा फूक का होगा जब के डालड़ा देगा तेरे ऊपर, और फिर के होगा। कबीर कुल करनी के काहार ने, यो अंसा गया बिगो, और फिर यो कुल के कर लेगा जब चार पाया का हो। जब नो कह गधा भड़कान देगा कुरडिया बकूदता, जब यू के डाले डालेगा तेरा भाईचारा, जब या तड़ दी हो ना तो खूब उनके दौरे आकर कति ना ये सत्संग में पूछ लेना उन पर। तो इसी प्रकार संत आकर के जानकारी देते हैं भाई दो दिन का जीवन से। अब क्या है को राम नाम पर लग कर नहीं देखता, हमारी इतनी मतलब मलिन आत्मा कर दी काल ने, हमारे बस की बात नहीं रह रही, इतना भयभीत कर रखा। पैदा होंगे कोई तो ऐसे कबीलों में पैदा कर दिया जाता है, माँ बाप मांस खावे, दारू पीवे, बीड़ी और होका तम ये सुल्फाते पीवे, और फिर बच्चा पे भी वही असर हो। फिर आम व्यक्ति जैसे अपने हरियाणा में देखिएगा, दारू का तो खूब जोर हो ही रहा है, ओका तो कहना है नहीं, ओका और बीड़ी तो यू तक सदा दला ही हो गया कि इसको तो बहुत ही अच्छा आदरणीय और पूजनीय मान लिया हमने अनजानपने में। और शराब का भी, अब शराब की थोड़ी सी अंतर हुआ है कि गवर्नमेंट ने बंद करवा दी, लेकिन जिसने नाश करना है वो बाहर दूसरे राज्यों में जाकर करे आवश्य, और लुकमा सुकमा पी लेता होगा कि ते करेगा जरूर। तो ये कारण क्या है कि हमने बचपन से ही अपने बच्चों को सतमार्ग नहीं दिखाया। ईब रोवे से बेचारी बैठ बैठ कर बुढ़िया, और वह बुढ़िया कहने के हमारा छोरा का बर्बाद हो गया दारू पी वैसे, वतन ने कौन पी बुढ़े कभी, अक पिया तो मैं भी करता। फिर छोरा के उत्तरी रामायण बात चाहेगा, जब तेरना आप पिया करता तो लड़का भी बच्चे भी वही करेंगे काम। तो अब सतगुरु बंदी छोड़ गरीब दास महाराज की कृपा से, कबीर साहब की रजा से, बंदी छोड़ का जो यो मिशन है अभियान है, ये कति जड़ से उठा रहा है सतगुरु की वाणी अनुसार। जिस घर में बंदी छोड़ प्रवेश कर जाते हैं वहां से बीड़ी का शराब कति खत्म हो जा, और आने वाले जो बच्चे और पीढ़ी होगी उनको देखिए कितना बढ़िया रंग लगेगा, उनको तो समरा समराया घर मिलेगा, उनकी आत्म कल्याण में कोई दिक्कत नहीं होगी, घर में आरती होती पावेगी। एक तो दादा अपने बेटे ने पोते ने ओका पीने सिखावे, अरे एक दादा ने कहा जा बेटा आरती कर ले, मंगलाचरण पढ़ कर सुनाइए, बढ़ाई सुनाइए, गरीब नमो नमो थुत पुरुष को, यानी एक तन्यू भाव लावेगा, अरे एक उठ देने का गाड़ दो तक गाड़ दे, बोलन का तरीका भी गलत हो जाता है बिना सत्संग माने से, बच्चे का औरत का भी आदमी का भी। बच्चा ने कड़े लड़के मतलब जो मुंह में आ जाए वह कह दे, तो आगे बच्चे वही भाषा वह सीखेंगे वही पर उपयोग करेंगे, और इस प्रकार हमारा ये जन्म कति बर्बाद हो जा सके। तो फिर हम उनको बतावा कि पहला तम छोड़ो का बीड़ी, ई भी पी वैसे बुढ़ा खाओ का तो पीऊ सू, शराब नहीं पींदा मवा मिलती ना होगी, हाँ बोला नहीं सहका दी ब्याह शादी बद बेसक पी लो ना, तो टाल हो रही सेवा तो मजबूरी में हो रही होगी, वहां छोड़ कर आज बीबी नहीं सह तुम, तो पहले तो आप छोड़ो फिर आपके बच्चों को कह सकते हैं, आप भी कह सकते हो। तो इस प्रकार पूरे परिवार के परिवारों ने हुक्का बीड़ी शराब त्याग के आज वो फुलवाड़ी खिलगी बंदी छोड़ की, और परमात्मा की वाणी का उसमें प्रतिदिन उच्चारण होता है आरती रूप में, नितनियम रूप में, साल भर में कथा भी सतगुरु की वाणी की गरीबदास के पाठ की हो जाती है। तो आज के युग में तो वो ऋषि परिवार हैं, वो संत परिवार हैं, जिस घर में आज ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब तो हो सकता है कम कदर करेंगे, लेकिन जब हम यहां से चले जाओगे, जब यह या दुनिया याद करा करेगी, अक हमारे तो उजड़े घर बस के और आने वाली पीढ़ी भी याद करा करेंगी, अक ये व्यवस्था हमारे घर में ओए होए होए। तो ये इतना बहुत ही लाभदायक और उत्तम मिशन है, अगर ये ठीक ढंग से चल गया, बंदी छोड़ की कृपा रही और आप लोगों का सहयोग रहा, तो आप देखना। और एक व्यवस्था और करेंगे अभी थोड़े से दिन के बाद के बच्चों की शादी भी, सबको प्रार्थना भी करके कम से कम अपने सत्संगियों से तो हम कर ही सकते हैं कि कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करनी है जो कि ज्यादा दहेज की हो। कोशिश यहां तक करेंगे कि अपने लड़के और लड़की का विवाह एक ही स्थान पर बंदी छोड़ की वाणी का पाठ करवा के और माला गाल के बच्चों का संयोग मिला दिया जावे, आधे से ज्यादा दुख दूर हो जाएगा हमारा, 90% दुख हमारा। हमने ये मान रखा कि आज लाखों रुपया में भी लड़की पराई नहीं कर पाते, और हो जा सत फिर उसकी नो चिंता रहे, कदे मार ना दे, कदे नू ना हो जा। हम चाहते हैं धन ज्यादा क्यों देते हैं अपनी लड़की को, मजबूरी होगी इस समाज में ऐसी कुरीति उत्पन्न होगी। किस प्रकार कि जैसे अपनी लड़की ब्याह से, तो लड़की पहले भी ब्याह रखी उनके घर में, तो जेठानी और देवरानी भी हो सकती है, तो हमने नो चिंता रह सकते हम थोड़ा देवा अपनी बेटी ने, और आगे इसका मन ना टूट जाए, इसका ताने ना मारे, तेनो सोचांगे कम से कम वो जो बहू ले जा रही से दूसरी उतनी जरूर अपनी बेटी ने देवा। एक मनमाना अच्छे बड़े साहूकार ने ब्याह रखी उस घर में, तो उतना गरीब क्यों कर दे सके, इतना दे नहीं सकता, फिर उसकी बेटी उसकी लड़की हमेशा ताने सुनती रहती है, कभी सास के मुंह ते, कभी पड़ोसन के मुंह ते, कभी उसके मुंह ते। तो इस प्रकार हम इस बुराई को दूर करने की भी कोशिश करेंगे, सतगुरु की कृपा रही, आप लोगों का सहयोग रहा। इसमें कुछ बहुत ही आसान काम हो जाएगा, आधी मेहनत में काम चलेगा, वो पैसा आप जोड़ते हो उसको धर्म पर लाइयो 10%, बाकी अपना आराम से कमाइयो और भक्ति करते रहियो, 90% चिंता आपकी। कबीर कुल करणी के कारण ये हंसा गया बिगो, तब कुल का को लाज है जब चार पाया का हो, कबीर केवल राम की तू मत छोड़े ओटे, घन एरन बिचलो हो जो गणी सह सिर चोटे, के परमात्मा के नाम की भाई कति भी ना छोड़िए आड, सतगुरु के नाम की, सत्संग की, गुरु के नाम की आड़ ना छोड़िए, ना तो फिर ये हालत होगी तेरी, क्यों करे तले तो घन होगा और बीच में तू होगा, और तले एरन होगा ऊपर घन बाज जाएगा तेरे ऊपर, पटाए पट रहेगी, कभी कुत्ता बनकर, कभी गधा बनकर, कभी गंदी नाली का कीड़ा बनकर, सुअर बनकर और जंगली जानवर बनकर, 24 घंटे चिंता। इसी बूंदी सर्दी देखो कितनी खतरनाक शीत लहर चल रही है, और वो पशु जंगली उन खेतों में बेचारे भाग भाग कर उस में भीग जाते हैं अपना पेट भरन की खातर, और ऊपर से हवा चल रही है, ठिठर रहे होंगे खड़े खड़े की तय, तो ये हालत आपकी होगी। फिर डर दूसरा एक दूसरे को खाने का, शेर खा जावे, बघेरा खा जावे, वो भाग भाग कर जान बचाओ, माड़ी सी खुड़का होगा नो देख करके डांक मारेंगे, बच्चे कितो रहेंगे, वो कितो जाएंगे, तो ये हालत तेरी फेर होगी बीरा, ये बचाओ कर सकते हो। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कैसा धू के संगे, बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे, अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे उक्का पाड़ पे तो जान देने का लो पी लो ना मेरे यार, तो कहेगा ना भा मन तो छोड़ दिया, क्यों के हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरो सोचू खा कर बिल्ली ने कह अज करण चाली, यानी 36 ताने मारेगा, और फिर नो कहेगा भाई काल न तो दरवट्टी भी छुटवाओगे तेरी, यू नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, एक दिन में, दो दिन में, तीन दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा, तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे रा अपना सत्साहिब कर उठ के चलता बना कोई प्रेमी दौरा बैठे प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ली कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा खेत में चला जा घूमे जा भजन करें जा अपना डोला पर कहन दे जा वैसे बैठ के कर ले जाडे के मां धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना के तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में केसो वै सुख चैन यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रैने। नानक साहब से एक भगत ना आकर कही के महाराज आप तो हमेशा मायूस से रहते हो जैसे आपका कि मैं खो गया हो आपको क्या तकलीफ है। तो वो न्यो बोले भाई मेरी तकलीफ बेटा तेरे पर ना मिटे मेरी तकलीफ टेढ़ी से के हो गया जब बताते महाराज इसी की बात तकलीफ होगी तो आप क्यों नहीं तो कभी प्रश्न नहीं देखे हमना। ने बोला भाई प्रश्न में अड़ो हूं क्या पाए मेरे न्यो नहीं समझ में आती ना पांचते कभी हम नस्ते भी नहीं देखे। तो नानक साहब कहते हैं ना जाने काल के कर डारे किस विद डर जा पासावे और जिनके सिर पर मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे जिनके ऊपर हरदम तलवार लटकी हुई कच्चे सूत बांध के और नो कच्चा धागे से सूत से बांध कर तेरे ऊपर तलवार लटका दे कोई और नो कहेंगे सोजा डाट कर सेज बिछा दे तेरी सोजागा अकनायक के मन माने कह रहा किस में टूट जा गद पड़े ऊपर काट गिरे मने फिर नींद आओगी तनक ना जिकत ही नहीं आवे। तो इस प्रकार मैंने वो अपनी मौत व कच्चे तार का बंधी हुई तलवार ज्यो की जो नजर आव सब आई आसन की तो फुर्सते ना रह रही मने मन तो वो रोना दुखना ना मिटता कि कुड़बरावे उस तो पहले कितनी कमाई मैं कर सकता हूं। तो कहते हैं कि ना जाने काल के कर डारे किस विद डर जा पासावे और जिना के सिर पर मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हासावे। फिर नो बोला आप नेरो सारियाण अक नहीं जब हमारा सत्संग होता है तब हमें प्रसन्नता होती है उस दिन में बहुत खुश हो सो जब हमारे साधु मिलते हैं भगत आत्मा मिलती है मेरा रोम रोम हंसता है अकेला नहीं हंसता मैं। कहते हैं साध मिले साड़ी साधी होंदी विछड़ दें दिलगीरी वे अखदे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल हर दम रते हरिनाम से ये झूल अनहद झूल ये बौड़ी बूझ से दिखे महात्मा भगत जन अक पागल सो सत्संग में जावे पागल से घर बैठा रहे से एकला बार फेटन मिलन भी ना आता इनकी तकल मार ली ये डंडोत करो रेत में लोटे ये तो अकल लूणे से अकल लूणे बिना अकल के बेअकले। तो महाराज कहते हैं ये अकल अलूणे दीखते दुनिया की नजरा में ये सर्व अकल के मूल या इन इनके अंदर सर्व अकल है इनके पूरा ज्ञान से ये जड़ से इनके पास सर्व अकल के मूल यानी ये ज्ञान के भंडार से इनके पास है और हरदम रते हरि नाम ते ये झूले अनहद झूले उस परमात्मा के नाम के हिंडोले में बैठ गए अब ये उसके नाम का रस पी रहे हैं। तो इस प्रकार सत कहते हैं साध मिले साड़ी सादी होंदी जिस दिन हमारा सत्संग हो सै ना नो बोले वह नानक साहब उस दिन मैं बहुत खुश होया करो और मारा भाई कति नो फुला फुला फिरा करो मैंने किता किता पा टक क्या करे और भाई जब वो चले जा जब मैं फिर रोया करो। कहते साध मिले साड़ा सादी होंदी सादी कहें खुशी को गमी सादी खुशी और गमी साध मिले साड़ी सादी होंदी जब बिछड़ जा जलगीरी वे फिर मन मायूस हो जाता है अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो कहते हैं थे उप वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा रोवे था कि भजन करूंगा हर तेरा थे ऊपर न पैर तले न शर तेरा रोवे था कि भजन करूंगा ओटी थी के भजन करूंगा हर तेरा थे ऊपर न पैर तले न शर तेरा वटी थी के भजन करूंगा हर तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा। नाभ कमल में नीर जमा तेरा दीना मल बना, नीचे शीश चरण ऊपर को वो दिन याद करा। नैन नाक मुख द्वारा देही तेरा नक्शक साज बना, नीचे जठरा अग्नि जले थी तेरा लगी नताती ही बाय। दांत नहीं जब दूध दिया था अमी महर्ष खाय भरा उदर तेरा। रोए था के भजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा। रोए था के भजन करूंगा। दाई आई घूंटी प्याई माता गोद खिला, और बाहर आया भरम भुलाया ये बजे तोर सनाहा। तू ही तो छोड़ दिया चला अधम किस राहा, और जो दिन आज सो काल नहीं रे आग फिर धर्म राय कहाँ गया डर तेरा। रोए था के भजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले गर्भ में था डेरा। रोवे था के भजन करूंगा। द्वादश वर्ष खेलते बीते लीनिया ब्याह करा, तरुणी नारी से घर बारी चल्या मूल गवाए। रातों सोवे जुनुम बगोवे दोंदी खेत कुमा, बिना बंदगी बाद वह तेरा जन्म अकारथ जाव जन्म हो खर तेरा। रोए था के भजन वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा। रोए था के भजन काले काग गए घर अपने ये बैठे सेत बुगाए। ये काले बाल सफेद हो गए तेरे, काले कागे गए घर अपने ये बैठे सेत बुगाए। दांत जाड़ तेरे उखड़ गए या रसना गई तो तड़ाए। जम किंकर सिरहान बैठा ये खुर चुक देखा खाए। रसना बीच जो मेख मार दे फिर सैनो दम बताए। ऐसे सुम बतेरे जगत में दरा ढक्या रह जावे कहाँ गया जर तेरा। रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था। रोवे था के भजन करूंगा हर। कुल के लोक जंगल में ले जाके दिन्या ठोक जड़ाए। भाई फिर पीछे तू पशुवारे कीजे दिजबल बना, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर भराए। शर पे सिंग दिए मन बोरे एक दो मत मच्छर उड़ाए। कंधे जुआर जोते कुआ कंधों का भुस खाए। फिर पीछे तू खर की जगो कुरड़ी चुगने जाए। टूटी कमर पजावे चढ़े तरक्का गमा से गेलावे कहाँ गया घर तेरा। रोवे था के भजन करूंगा हर तेरा, वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा। रोवे था के भजन करूंगा। भाई सुख देन चौरासी भुगती ही कहाँ रंक कहाँ राय। कहते सुखदेव जैसे ऋषि ने भी लख 84 में जाना पड़ गया, अभिमान अहंकार वश कहां रंग कर, कहां राजा और कहां गरीब और साहूकार की यहां पर नहीं बसावेगी। सुखदेव ने 84 रे भुगती, कहां रंग कहां राहे, ऐसी माया राम बली की, ऐसी माया काल बली की, ये नारद मुनि भरमाए। दारू पर लाद कबीर नाम दे, रहे निशान घुराए, दास गरीब चरण का चेरो, शब्द शब्द समाय, अमरपुर होया डेरा, रोए था के भजन करूंगा, वो दिन कर ले याद गर्भ में थाडे, रोए था के वजन करूंगा, हर तेरा थे ऊपर न पैर तले न सर तेरा, ओटी थी के वजन करूंगा, हर तेरा थे ऊपर न पैर तले न सर, ओटी थी के भजन करूंगा, हर तेरा। देखो परमात्मा बंदी छोड़ गरीब दास जिया ने एक का शब्द में सारा ने चोड़ दर दिया ठा गए कि इसी दुर्गति तेरी होश है, आज तक तू बाल बच्चे दार भी से, तेरे पास सारा सौदा व्यवस्था खाने की पीने की रहने की ओढ़न की पहरण की खूब सुथरी से, जिसी जिसका वित्तीय हालत से, पशुओं से तो घणी बढ़िया से, और फिर नौका ये बनेगा तेरे संग में। अब यह बात जा याद तो रह जातो स सत्संग, और याद नहीं रंदी तो फिर कुसंगत बरगी। कहा था कि मौत बेसारी बावर, इतना अचरज कर दिया कौन है, और तेरा तन माटी में मिल जाएगा जो माटी में। एक गांव में हमने सत्संग कर दिया, बुढ़ा खेड़ा में सत्संग किया, पाठ कर रहे थे, एक भगत सर रमेश नाम से उसका, नो बोला जी मन ने यो सत्संग नहीं सुना था आज तक, हमारा गांव में उपदेशी बहुत से और पंथों के भी से, लेकिन यह बात मन नहीं सुनी थी, मंत्र रात ने नींद नहीं आई, आपने न्यू कहा सुबह 8 बजे 9 बजे 22 नाम मिलेगा, आप सत्कर्मानियो मन सारी रात बैठ के काटी है, मतलब तड़के उठ दया लिया ना कह। एक भगत जी ने बोला भाई 9-10 बजे बताओ नाम देंगे, मतलब दार भी नहीं काट का, मैंने रात ने कुत्ते और सब कुछ सुअर ये सारे कुछ न्यू क्यों नहीं दिखे, भाई रे नूर न्यू बनेगी मारा गेला, किसी भूल में थे तो जिसकी आत्मा पुण्य है, जिसके अच्छे संस्कार से, ये होता भी पिछले संस्कारों से वैसे नहीं होता। कहते हैं जब बलख बुखारे का बादशाह अपने सारे राज न छोड़कर चाल पड़ता है, तो रास्ते में एक मेरे के सा बेकूफ सा, एक औरत उसकी बूढ़ी सी, और एक लेरा गां वह भी बूढ़ी सी, और झूफड़ी घाल राची सुथरी, क्यों पहला झूफड़ियां ज्यादा होती थी, ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का थोड़ा थोड़ा आसार हो गए थे, वो बेचारा अपने कामल लपोटे लपेटे हुए बलख बुखारे का बादशाह अब्राहम सुल्तान उस झोपड़ी का पाछ कह बैठ जाता है, हवा की आड़ली की हवा ना लगेगी, जड़ा कम लगेगा, सर्दी कम सतावेगी, फिर वो दोनों बूढ़ा बुढ़िया वार्ता करें से, यानी 40-50-55 साल के थे, ने बोले अच्छी बारिश होगी, खूब मौज हो जाएगी। तो वहां कहते हैं इतना ठाट हो गया अपने ते बलख बुखारा के बादशाह के भी कोन्या, और वहां से देख मूर्खा नहीं हुए या आसमान रहे इस टूटी सी झोपड़ी में, तो कहता है सुबह उठ के वो जब दिन निकलने वालिया, ने बोला भाई जी एक बार फिर कही हुआ है बात, कौन सी कि बलख बुखारा के कर रहे थे, ने बोला तो कि सुना था अकमा थारी झूफड़ी का पाछा बैठा था भाई, अपना मुंह काला कर रखा था उसने कि दुनिया पहचान ना ले, मार के छपके पानी के, ने बोला भाई मैं सु बादशाह बलख बुखारे का, या तक काग की बीट से बोला के राजी हो रहा से, आ चल सतन सत्संग में ले चालू अपने नाम अपना पांडा छुटवा ले, क्यों दुख पा रहा है, ने बोला अपना काम कर बौड़ी बूझ, तो असल तो बलख बुखारे का बादशाह ना दिखता होगा तो तेरे के साथ पागल नहीं मैंने जो राज छोड़ खा गया। तो महाराज कहते रांडी ढांडी ना तजें ये नरकवे काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया, थी कोई पछली लागे। तो पिछले संस्कार वश ही हम यहाँ पर सत्संग मारे हैं, दान भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, तड़के लेकर शाम तक नंगे पैरा उस परमात्मा के नाम पर। वैसे नहीं हो सकता ये, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस काल ने हमें कितनी बुरी तरह यहाँ पर बांध रखा से, अब आप देखिए शाम का हमारा भरोसा नहीं, किसकी गेला के बीत जावे, उसके बावजूद भी हम इतने अंधे कर रखे से, यू के कारण से, या सुनियोजित यानी बहुत अच्छी तरह विचार कर की हुई कहानी हमारे साथ है। बच्चे पैदा करना हमारी मजबूरी से, इनका पालन ना करें तो मजबूरी से, मकान नहीं बनावे तो मजबूरी से, ब्याह शादी ना करें तो मजबूरी से, और वहां पर धागा हो, धूल उठती हो, और भाई जैसे कोई मशीन के पुर्जे बन दे खराद में लोह की धूल उठती हो, नाकों में चढ़े, मजबूरन करनी पड़ रही है, पेट दिखे, बच्चे दिखे, मकान बनाना, फिर शादी, सर्दी के कपड़े आगे, गर्मी के कपड़े आगे, ब्याह आ गया, छुच्छक बात, या हमारा हम सोचा हम निश्चिंत है, निफराम से फ्री है, एक सेकंड भी फ्री नहीं है जब तक तुम संत शरण में नहीं आते। तो ये सारी हमारे ऊपर मजबूरन थोप रख्या से, हमारे से बुरे कर्म करवाता है, ये मन रूप में काल बैठा से, और फिर नो कह बेटा तेरे कर्म से तन्ने भोगने पड़ेंगे, ये फिर मारे कर्म हो जाते हैं, आनंद ले से काल और दुर्गति जीव की कर राखी से, यही संत बताने के लिए आते हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि सृष्टि क्यों रची और के इसके पीछे राज है। जब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे तब तक इसने कई बार समझे, कई बार सुने, जब जाकर घर करेगी यह कहानी के साचे नो बन रही से, क्यों काल मन रूप में बैठा सा, प्रथम तो सुने नहीं गा, सुनेगा तो विचार करे कर ला लेगा, या तो जच दी नहीं, या बात तो समझ में नहीं आई, नो क्यों करो सको से, ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे भगवान से, इब पूरे का बेरा पट्टे पाछे पता चलेगा ना दूरा कौन सा से। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं, और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अधूरे हैं, ना भक्ति कर सकते और ना भक्ति पर लग सकते। आप रोज आरती पढ़ते हो, अदली आरती अदल पठाऊं, भाई युगा युगा का लेखा ल्याऊं, जा दिन ना थे पिंड नी प्राणा, नी पानी पवन जमी असमाना, कच्छ मचकूरम ना काया, अर्चन सूरज ना दीप बनाया, शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद शारद ना विश्वकर्मा, सिद्ध 84 ना 3300, नौ अवतार नहीं 2400, पांच तत्व ना ही गुणती ना, नाद बिंद ना ही गटसीना, चित्रगुप्त ना कृत्रमबाजी, धर्मराय ना पंडित काजी, धुंधुकार अनंत युग बीते, जा दिन कागज कौ किंची थे। कहते जा दिन थे हम तख्त खवासा, तनके पाजी सेवक दासा, संख योगन पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहना, दास गरीब कबीर का चेहरा, चेहरा कहते हैं चेले को, दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरा पुर डेरा। अब धर्मदास ने पूछा कि हे महाराज ये सतलोक क्या है, तो बंदी छोड़ बताते हैं कि सतलोक का ज्ञान हो गया तो समझो आपकी भक्ति शुरू होगी, अभी तक तो आप भक्ति पर लगे भी नहीं सो भाई। और जबकि धर्मदास बहुत ही तगड़े सेठ और इतने आरूढ़ थे राम कृष्ण की भक्ति में कि उस जैसी भक्ति उस युग में शायद ही कोई हंस कर रहा होगा, और ऐसे हंस को उस काल के रस को भुला कर और सतपुरुष का रस प्रदान करना कोई बालका का खेल नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। एक भी नहीं सुना था धर्मदास, बंदी छोड़ कहे थे जब सिर पाव था, बता क्या तन्ने कर्ज कहां से देख लिया, को गीता में दिखा, शास्त्र में दिखा, मुझे पुराने पुराण में दिखा, कहां लिखा है कि कबीर साहब कोई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष है, कोई सतलोक भी है। तो बंदी छोड़ कहने लगे भाई ये शास्त्र किसने लिखे थे, ये किसी ने कहे होंगे, हाँ बला ऐसा लिखा है कि न्यू हुए थे वेद व्यास ने लिखे हैं, सब 18 पुराण भी चारों वेदों को दोबारा लिखा है, तो फिर वेद व्यास ने ही लिखे हैं, तो वेद व्यास कौन है कि ऋषि हुए बहुत बड़े, तो आज जो वेद व्यास की कही हुई बातों को जो लाख वर्ष पहले हजारों वर्ष पहले कही गई और आगे होने वाली ये सारी लिख दे तो वो क्या ऋषि नहीं होगा, हाँ वो तो होगा, बिला बैठ मैं तू लखर में बोलूंगा। और फिर मिलाना जाके तेरे शास्त्र रमन आज तक पढ़ा भी नहीं है भगत जी, अनपढ़ हूं मैं, एक अक्षर नहीं जानता। जब धर्मदास को गीता सुनाई, गीता का उपासक था, इसमें ग्रंथ साहब में कबीर सागर में लिख रखा है गीता का पूरे 18 के 18 अध्याय गरीबदास कबीर साहब ने, और फिर उनका सार लिखा कि इसमें न्यू कया भाई, और नीचे सार दे दिया ऊपर तय न्यू कह है और बाद में ये न्यू हुआ। धर्मदास का जो है ना काटे ही लकड़े ओ तेरा बोलो या तो भूल बोले यहां बीरा क्या का ज्ञान था। तो जब वो कहता है महाराज मुझे बताओ फिर वो सतलोक की कहानी क्या से, बंदी छोड़ कहते हैं कहानी नहीं है यथार्थ चीज से। तो सबसे पहले सतपुरुष अकेला था, निराकार रूप में गुप्त रहता था। सतपुरुष सतलोक का भगवान जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांड के भगवान से, फिर उन्होंने अपनी रजा से सतलोक के रचना की। उस लोक में प्रथम शब्द उच्चारण करने से सभी दीप यानी स्थान सतलोक के, यहां के नहीं सतलोक के सब दीप मान सरोवर, वहां पर बहुत बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ बड़े सुंदर व्यवस्था है वो रच दी एक शब्द के, एक शब्द उच्चारण मात्र से। जैसे कहते हैं ना भी फलाना ने न्यो रज करी थी, उसने कह दिया था अस्तु अग हो गया ईसाए, तो उसका वो काम बन गया। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष ने कहा कि इस प्रकार इतने दीप और ये इतना बड़ा लोक, इतना ये अमिट अमर सतलोक हो जावे, इतना कहते ही हो गया। उसके बाद उन्होंने 16 शब्द फिर उच्चारण किए, एक शब्द से एक पुत्र की उत्पत्ति करी। किस प्रकार, पहले सतपुरुष अकेला था गुप्त रहता था, फिर उसने सतलोक में अपने रचना करी, पहले शब्द से दीप लोक आदि रच दिए, दूसरे शब्द से कूरम, कूरम कछुआ नहीं है, वहां एक हंस है सतगुरु का बहुत बड़ी शक्ति का यानी परम उनका पुत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तो उसके पास सिंह भी नहीं है इतनी बड़ी शक्ति का है, तीसरे शब्द से ज्ञानी नाम का पुत्र है, और चौथे शब्द से विवेक, पांचवें शब्द से तेज, छठे शब्द से सहजदास, सातवें शब्द से संतोषदास, आठवें शब्द से सूरत, नौवें शब्द से आनंद, दसवें शब्द से अक्षमा और ग्यारहवें शब्द से निष्काम, बारहवें शब्द से जलरंगी, तेरहवें शब्द से अचिंत, चौदहवें शब्द से प्रेम और पंद्रहवें शब्द से दयाल और सोलहवें शब्द से धैर्य, ये 16 और 17वें शब्द से योग संतायन। इस प्रकार सतपुरुष ने 17 शब्द उच्चारण उच्चारे, जिसमें 16 शब्दों से 16 सूत यानी पुत्र तथा एक शब्द से एक दीप व लोक मानसरोवर आदि सतलोक में रच दिए। 16 पुत्रों को अलग अलग दीप देकर रहने की आज्ञा दी, सब पुत्र अपने अपने दीप में आनंद से रहने लग गए। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा, अचिंत जो सतगुरु का पुत्र है 13वें नंबर का यानी 12वें नंबर का, उससे कहा कि आप इस सतलोक के अंदर और रचनाएं कीजिए। तो आनंद उसको आनंद दीप दे दिया। फिर सतपुरुष ने अचिंत से कहा कि सृष्टि रचना करो। अचिंत ने प्रेमानंद शब्द उच्चारा, प्रेमानंद उच्चारा, इस शब्द से अक्षर की उत्पत्ति हुई, अक्षर से प्रकृति सूरत उत्पन्न हुई, प्रकृति अक्षर से चार अंश उत्पन्न हुए, इनको देखकर अक्षर पुरुष बहुत आनंदित हुआ। फिर आनंद से निंद्रा आई तथा 70 युग तक कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो पाई। चारों अंशों ने समाधि लगाई और पुरुष से पूछा कि ये अक्षर पुरुष तो निंद्रा में है, सृष्टि कैसे रची जाएगी। तब सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने एक अवगत किया जल तत्व से, एक अंडा उस जल में जिस तालाब के अंदर वो अक्षर पुरुष सो रहा था उसमें एक बहुत बड़ा अंडा छोड़ दिया, गड़गड़ गड़गड़ होती हुई गई तो अक्षर पुरुष की नींद खुल गई। नींद जब खुली तो एकदम वो कड़कड़ाकर उसकी तरफ देख रहा है, उसकी तेज आंखों का जैसे सुते नठा देना एकदम गुस्सा सा महसूस होया करे। तो उसमें एकदम तेज से देखा तो अंडा फूट जाता है, उसमें से फूट का ये निरंजन निकला से एक मनुष्य निकला, उसका नाम निरंजन रख दिया, ज्योत रूपी तेज से तेज, उसको तेजो में शरीर है तो उसको ज्योत निरंजन कहा। तो ज्योत निरंजन जब निकला तो ऊपर से आकाशवाणी होती है कि दोनों बाहर आ जाओ। आवाज से अक्षपुरुष की निंद्रा अंडा जल में गिराया तो उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई, वह उस अंडे के पास गया तथा तो क्रोध से देखा तो अंडा कोप से कोप अंडे में प्रवेश कर गया, तो क्रोध से तेज क्रोध के तेज से अंडा फूट गया। अंडा फूटने से निरंजन की उत्पत्ति हुई अर्थात अंडे से निरंजन निकला। तब निरंजन को मानसरोवर दीप दिया जो कि सतलोक के अंदर मानसरोवर है, एक मृत मंडल में इसमें 21 ब्रह्मांड में भी मानसरोवर है। मानसरोवर दीप दिया वहां पर आनंद से रहने लगा। कुछ युगों के बीत जाने से निरंजन के मन में आई कि मेरे लिए यह कम स्थान है, कुछ और प्राप्त करना चाहिए। जबकि दूसरे उनके भाइयों को दूसरे बड़े बड़े दीप दे रखे थे, उसको केवल एक मानसरोवर मिला हुआ था। इसलिए उसने एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। तब सतपुरुष ने सहज दास नाम के पुत्र से कहा कि निरंजन से पूछो क्या चाहिए, उसने हमारी 70 युग तक सेवा की। तब सहज दास ने निरंजन से पूछा तो बताया कि मुझे कुछ और स्थान चाहिए, ये जगह मेरे मुझे अच्छी नहीं लगती, कम है। तब सतपुरुष ने सहज से निरंजन की मांग बताई तो सतपुरुष ने खुश होकर के उसे 3 लोक दे दिए। निरंजन बहुत खुश हुआ। कुछ समय पश्चात निरंजन के को विचार आया क्यों न अपना अलग राज्य किया जाए। यह विचार कर 70 युग फिर एक पैर पर खड़ा होकर निरंजन ने सेवा करी। देख कितना बड़ा तप कर रखा अगले ने निरंजन ने, और उसके बाद उसको के मिला, खड़ा होकर तप किया। तब सतपुरुष ने फिर सहज दास को भेज कर पूछा निरंजन क्या चाहता है। अब तो उसको 3 लोक दे दिए, ये तीनों लोक मानसरोवर पर रहने थे, हमारा तेज पुंज का शरीर होना था, लेकिन इसने अपनी गलती के कारण विकारवश होकर के हमें यहां पर लिया, निरंजन ज्योत निरंजन। सहज ने पूछने पर निरंजन ने बताया कि मैं तो अलग राज करना चाहता हूं, कृपा करके मेरी मांग को सतपुरुष से पूरी करवाओ, मुझे कृतार्थ करो, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा। सहज दास ने सतपुरुष को सारा वृतांत बताया तो सतपुरुष ने कहा कि सृष्टि रचने की सामग्री कूर्म के पास है, जो सबसे बड़ा पुत्र है, कि ये सृष्टि रचने की सामग्री उसके पास है, और निरंजन से कहो कि वो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अपने बड़े भाई से ये सामग्री मांग लावे। तो यहाँ कहते हैं कूर्म के पास है तथा उसे निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनय पूर्वक सामग्री प्राप्त करे, तब उसकी सृष्टि ठीक चलेगी, कोई कलेश या दुख दुर्भिक्ष अकाल मृत्यु आदि नहीं होगा। परंतु निरंजन ने जाकर और कूर्म से बेअदबी करी, उसके सिर का मुकुट जबरदस्ती उतारा और इस प्रकार 3 मुकुट उतारे जिससे चंद्र पृथ्वी सूर्य पृथ्वी पानी पवन धरती आकाश 9 लाख तारे 7 दीप 9 खंड 14 भवन आदि उत्पन्न होकर अपने अपने जगह पर 9 ग्रह आदि अपने अपने स्थान पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब उसने जाकर के कहा था कूर्म से निरंजन ने कि मुझे सृष्टि रचने की सामग्री दो, तो कूर्म ने कहा कि आपको किसने बताया कि ये सामग्री मेरे पास है, ये तो बहुत कीमती चीज है, गुप्त है, ये केवल सतपुरुष और मैं ही जानते हैं, पिताजी को और मेरे को मालूम से और ननी बेरा। वो कहने लगे कि पिताजी ने बताई से और मैंने तप किया था। कहने लगा कोई बात नहीं, मैं आपको सामग्री दूंगा, पर पहले मैं पिताजी आते सलाह लेकर पूछ लेता हूं। सलाह कैसे लेते हैं, समाधि लगा कर आंख मीच कर नू बंद करके और समाधि लगा कर ध्यान द्वारा सतपुरुष से बात करना चाहते हैं। निरंजन के मन में क्रोध आ गया कि मेरे को बेकूफ समझता है, ये मुझे झूठा समझता है, मैं क्या झूठ बोलता हूं। पकड़ कर उसका मुकुट और हिलाया नू, मेरी बात सुनो, ऐसे मुकुट किया था कि मुकुट में तय पहला मुकुट उतारा तो ये कहते हैं 5 तत्व निकले, उसने सोचा इस मुकुट में देखे मैं खास चीज से, उन्हें फिर दूसरा लाया, फिर तीसरा। इस प्रकार ये सारे ग्रह पर है, सारे आप अपने स्थान पर, चंद्र सूर्य तारे पृथ्वी सात दीप नौ खंड जो भी है ये सब आप अपने स्थान पर 88,000 खेड़े ये अपने अपने स्थान पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। 21 ब्रह्मंड तक का उसके पास उपलब्धि होगी। अब उसमें लेकर के अपने सामान को वो चुप देसी अपने स्थान पर आ बैठा। अब यहां प्रश्न ये उठेगा आपके मन में, प्रथम तो आज का युग इस बात ने नहीं मान सकता कि इतनी बड़ी पृथ्वी, आग का गोला सूर्य और ये समंदर एक मुकुट के अंदर होगा, ये तो बनावटी बातें हैं, ऐसा मन में विचार आता है। लेकिन नहीं, जिनको ज्ञान है उनको विचार गलत नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि बड़ का वृक्ष कितना लंबा चौड़ा होता है, बट अगर एक बट के वृक्ष को आगे बढ़ने की जगह मिल जाओ तो सारी जींद में का फैल सकता है, इतना लंबा चौड़ा हो सकता है एक बट यानी बड़ का पेड़। और एक बड़ के पेड़ के बरमंटे को, बरमंटा का आकना रियाने में फल, बट का जो फल हो सा इतना को सा जैसे बेर के समान, और उसके अंदर कोई कहे कि ये इसे ही से बट, एक बट के पौधे को दिखाकर, पेड़ को दिखाकर लंबे चौड़े को, और कोई नो कह देवे कि इस एक फल में इसे इसे सैकड़ों और हजारों बड़ से, इस फल में हजार बड़ से इसे इसे, पर मूर्ख तो हंसेगा, समझदार पकड़ जाएगा ठीक है, क्यों बीज है बीज से बड़ बना। तो ये सारी स्थिति सूक्ष्म रूप में थी, बीज रूप में थी, बहुत बारीक बीज से, जैसे हवा दिखती भी कोई नहीं तो इसका बीज क्या होगा, पानी पृथ्वी ये बहुत मामूली से बीज रूप में वहां रखी हुई थी, फिर बाहर उसका लगते ही मुकुट से निकलते ही अपने आप फैल जाती है। आपने देखा होगा ना एक ओडेक टिकिया होते हैं बच्चे इसमें होली पर या दिवाली पर चलाते हैं, इतनी टिकिया होती है जैसे छोटी सी बटन के समान, और उसका आग लगा देंगे और उसमें तो नो होकर इतना लंबा निकल जाएगा बेराना कितना बड़ा, तो वो था के था उसमें, पर वो देख किस तरह घूम का आ गया, किसी का न्यू बनेगा किसी का न्यू बन जाएगा, तो वो उसी ढंग की गोलियां थी उसमें, और वो इतनी हजारें हो जाए इतने पैकेट में। तो इसी प्रकार ये पृथ्वी सारा कुछ उसमें था और ये न्यू होकर फैल गया, फिर साइड देसी उनके बाहर की हवा लागते ही बाहर का जो वातावरण से। तो इसी प्रकार ये मन में संख्या नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता, एक बाजीगर हो सै और गोली मुंह में देगा और इतना बड़ा बनाकर नो मुश्किल तक काट डागरा मुंह मत है, देखा होगा तो तुम नाम देख रहे तकरीबन, तो वो कहां से आ गया, यो तो एक आम जादूगर, और वो निरंजन और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उससे भी बड़ा जादूगर है, और जादूगर निरंजन भी बगलीगर का है, बगलीगर कहते हैं जादूगर को। तो इस प्रकार ये सब स्थान आप अपने पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। उधर से कोरम ने कहा आवाज दी के महाराज हे सतपुरुष, निरंजन मेरे से जबरदस्ती सामग्री ले गया और मेरे को आपसे बात भी नहीं करने दी, इतना उतावड़ा हो गया। तो सतपुरुष ने कहा कि उसके राज में शांति नहीं रहेगी, पर तो उसको उन्होंने बोला जी मैं उसने गढ़ूंगा। कोरम बोला, उन्होंने बोला ना भाई, संतों का काम लड़ाई करने का नहीं होता, तेरा छोटा भाई था, बड़ा का यही मैं में मानता हूं, उसे माफी दे दे। कहते इतना कहते ही कुरम शांत हो गया, नहीं तो कुरम जो है उसने कई गुना शक्ति ज्यादा है कुरम में, तो आ गया। अब कुबद्दी के ने चला टे क्या करे, उन्होंने कहा ना छोटा बालक ऊत हो से, वो छोटा था सारे में, तो कहने लगा उसके मन में फिर उत्पन्न आया, अकिन का के करूंगा पत्थरों का, कुआं तो पृथ्वी पा जा, कुआं सूरज पर जा खड़ा हो, कुआं ग्रह पर घूमे, खाली पड़े हैं इनमें जीव चाहिए, मेरा जी लाग गया रहे। तो उसने फिर 64 युग तप फिर किया, 64 युग तप किया, तो फिर सतपुरुष ने सोचा कि इसने अच्छी तरह सेट कर दूंगा, यू फिर ना करेगा ऐसा काम। क्या किया कि इसका ब्याह करांगे, जो बच्चा बार बार घर क्या न तंग करे और पढ़न जावे नहीं, कदे के साइकिल लूंगा, कदे के मोटरसाइकिल लूंगा, कदे के मत जीप खरीदूंगा, तो उन्होंने सोचा है कि इसका ब्याह कर अपना धंधा लग गए, तो उसकी शादी कर दी जाती है। और शादी हुए पाछा है वो भाई फिर अपने नून मिर्च तेल मलोज कर सारी उम्र बिताया जाएगा। उसने फुर्सते ना मिलती कर क्या गेला वो एक आधी वे सिख माँ बाप गेल लड़ पड़े तुम भाई बहु गेल क्यों लड़ा करो और बाकी वह चिंता नहीं रही। उसने फिर अपने काम आप लग्या रहेगा। तो यही प्रक्रिया ऊपर से चली है यहां से नहीं। तो वहां पर सतपुरुष ने पूछा अगजा बबू जी का की मांग है। 64 युग तप कराया इसने। कहने लगा मुझे जीव दे दो ताकि मैं अपना यहां पर मेरा अलग राज्य हो जा। कबीर साहब ने बोला सतपुरुष कहते हैं कि ठीक है इसको जीव दे दो। एक लड़की तैयार करी अपनी शक्ति से सतपुरुष ने एक कन्या का जन्म यानी शब्द से शक्ति से बनाई। तो इस प्रकार वो बनाया तो उस कन्या बहुत खूबसूरत थी जवान थी। निरंजन के लोक में सहज दास उसको छोड़ आया। जाकर छोड़ा कि जाओ इसको छोड़ आओ। निरंजन के पास जब वो कन्या आई तो निरंजन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, काम वासना प्रबल होगी। सहज दास चला गया था तो उस कन्या ने कहा कि निरंजन प्रथम तो आपकी और मेरी सृष्टि नहीं बनती, आप और हम बहन भाई से, उसी पिता का तू उसी पिता का मैं, आप मेरे पास एक सबल शक्ति है, आप कृपा उससे सृष्टि रचवा लीजिए। पुरुष ने मेरे को इसीलिए भेजा है मैं आपकी सृष्टि रच सकती हूं। लेकिन निरंजन के मन पर कोई भी विकार एक जैसे क्रोध शुरू हो गया तो सारे ज्ञान नष्ट कर देता है। उस समय ना सोचता कि तेरा आदमी मर भी जाएगा तेरी सजा भी हो जाएगी, उस समय नहीं सोच सकता वो। उससे एक विकार ने सारे को खत्म कर दिया, प्रथम बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसी प्रकार काम वासना जब प्रबल होती है उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं सोच पाता। बाद में सारे पता लग जाए उसका लठ भी लग गए हैं, कैद भी हो जा सके, उसका काला मुंह भी किया जा सके। उसमें निरंजन ने नहीं सोचा, लड़की जान गई कि इसके मन में बदमाशी है, अपने बचाव के लिए उसने सुख समरूप बनाकर और निरंजन के मुंह के द्वारा पेट में प्रवेश कर गई। वहां से आवाज दी कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो और मुझे बचाओ, निरंजन ने मेरे को खा लिया है और मुझे कृपा करके मेरी जान बचाओ। उसी समय सतपुरुष ने सहजदास को फिर भेजा कि उस निरंजन के पेट से कन्या को निकाल दे और उसको श्राप दे दे मेरी तरफ से। मैं श्राप देता हूं कि 1,00,000 जीव वो रोज खाया करेगा और यहां से निकाल दे इसको मेरे लोक तय और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पर इसको पटक दे। बहुत दोबारा मैं इसके दर्शन नहीं करूंगा और ना ये मेरे कर सकता। ये श्राप निरंजन को सतपुरुष ने दे रखा से। 1,00,000 जीव रोज खाया करेगा, इसका नाम काल होगा। तो ये ज्योत निरंजन का वहां से ज्यो का तो यू विमान चल पड़ता है 21 ब्रह्मांड समेत। रास्ते में जब यू आ रहा था तो सहज दास का लोक आवश है, फिर हाथ जोड़ा है कह सहज दास मेरी जान बख्श दे भाई, अर्ज कर दो भगवान ते तेरी मानते हैं परमात्मा सतपुरुष, मेरे को यहां रख ले तो अपने दीप में। इसको मालूम था कि अब तेरी बहुत बुंडी दुर्गति होगी, गंदे लोक में जाना होगा। सहजदास बोला भाई मैं एक बार सतपुरुष से पूछ लेता हूं, मैं अपने परमात्मा से पूछ लूंगा, अगर वो कहेंगे तो मैं आपको यहां रोक लूंगा, अगर वो मना करेंगे तो भाई मैं नहीं रोक सकता। तो धर्मदास सहजदास ने अपनी समाधि लगाई, सतलोक में पहुंचे। अर्ज करी महाराज आपका एक नौकर आपका सेवक धर्मराय नाम का निरंजन आया हुआ से और वो नो कहे मुझे यहां रख ले। कबीर कहते हैं सतपुरुष एकदम कहता है कि उसको जल्दी यहां से निकाल दे, उसको यहां नहीं रखना। 3 तलाक यानी 3 बार कहता हूं मन कर्म वचन से उसको कति नहीं रखना और जल्दी यहां से निकाल दे। तो सहजदास वापस आया वहां से अपनी समाधि वापस आई, आकर कहन लगा निरंजन जल्दी कर भाई, मेरे बस का नहीं, मन तरज करी थी महाराज जी नाट के यहां नहीं रख सकते तेरे को। फिर आगे कबीर साहब के रूप में वही सतपुरुष मिलते हैं, बिखमी घाटी ता कबीरा रोकी बाटी, कहते सतलोक से दिया ढहाई, वहां से नीचे को भगा दिया इसको। तो यहां पर ये मृत मंडल में आ जाता है। ये गरीबदास महाराज की वाणी प्रमाणी देती है, प्रमाण देती है आद रमैणी के अंदर। कहते हैं आद रमैणी अदली सारा जादन होते धुंधुकारा, कि उसमें कुछ भी नहीं था, उसमें केवल एक सत्पुरुष था। और वहां पर केवल एक सत्पुरुष था और सत्पुरुष ने ब्रह्मा, ये तीनों, ये सारी उत्पत्ति सत्पुरुष से इसने तप करके मांगी। विचारो लो ऐसा ब्रह्म आद्रमैणी अदली सारा और जादन होते धूंधू कारा, सत्पुरुष की न्या प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा। मन मनमोहनी सरजी माया और सत्पुरुष से ख्याल बनाया, धर्म राय सरजे दरबानी 64 युग तप सेवा ठानी। परस पृथ्वी दीनी जाको दीनी, राज करो देवा आधीनी। ब्रह्मंड किसो राज तुम दीन्या, मन की इच्छा सब जुग लीन्या। माया मूल रूप इच्छा जा, मोहे लिए जिन हूँ धर्म राजा। धर्म का मन चंचल चित चेरा, मन माया का धर्म का मन चंचल चित धारा, मन माया का रूप बिचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा। धर्म राय किया मन का पागी, विषय वासना संग से जागी। आद पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी। धर्म राय यानी काल को कबीर साहब ने, सतपुरुष ने अपने मन से त्याग दिया। हम कबीर साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर साहब आज के युग में चल रहा है, यही सतपुरुष है। पुरुष लोक से दिया ढहाई निरंजन को, वहां से सतलोक से नीचे ढा दिया, धक्का दिया, धक्का दे दिया। पुरुष लोक से दिया ढहाई, अगम दीप चल आए भाई। अगम दीप में सहज दास जी रहते हैं। सहज दास जिस दीप रहनता, भाई कारण कौन कौन कुल पंथा। धर्म राय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। भाई 64 युग हम सेवा किन्ही, पुरुष पृथ्वी हम को दीनी। चंचल रूप भया मन मोरा, चंचल रूप भया मन बोरा। मन मोहनी ठगिया भोरा, सत पुरुष का नामन भाये। और पुरुष लोक से हम चले आए। अमर दीप सुनत बड़ भागी, सहज दास मेटो मन पागी। मेरा ये दुख दूर कर दे भाई। बोले सहज दास दिलदानी, भाई हम तो चाकर सत सैदानी। मैं तो सतलोक के मालिक का नौकर सू। सत पुरुष से अर्ज गुजारूं, जब तुम्हारा विमान उतारूं। अब मैं पहले पूछ लूं बंदी छोड़ते हैं, और वो कहेंगे तो तेरे सारे ढमढमे नड़ रख लूंगा। बहुत बड़ा लोक से कोई आंट नहीं बनता। सहज दास को किया पियाना, रवाना करना सुरत द्वारा। सतलोक में पहुंचा सहज दास। सहज दास को किया पियाना, सतलोक लिया परवाना। सत पुरुष साहेब सरबंगी, अवगत अदली अचल अभंगी। ये महिमा गाता है सहज दास अपने मालिक को। जैसे हमने किसी से टेलीफोन करना हो, पहले उसको जी जनाब सर 3-4 बार बोलांगे, जब उससे कुछ कहेंगे अपने बड़े अफसर को, जय हिंद सर, यानी कुछ ना कुछ कह करके फिर उससे कहेंगे काम था महाराज, जैसे ऐसे वो फलाना व्यक्ति ने कह रहा से, तो उसका आग्रह हुक्म होगा तो ठीक से ना कहेगा नहीं नहीं करो इसको बंद, तो फिर वो कहे मेरी नहीं बसांदी, मन तक कही थी ना माने, चल अंदर। तो इसी प्रकार कहते हैं धर्म सहज दास को किया पियाना, सहज दास को किया पियाना। सतलोक लिया परवाना, सत पुरुष साहेब सरबंगी। अवगत अतली अदली अचल अभंगी। धर्म राय तुमरा दरबानी, अमर दीप चल गए प्राणी। हमारा तो भगवान और सतपुरुष के सामने यू प्राणी। अब डीसी हमारे लिए तो बहुत भारी चीज, और प्रधानमंत्री का अगर नौकर, तो इसी प्रकार पर ये निरंजन ब्रह्म उस पूर्ण ब्रह्म के आगे एक प्राणी है। धर्म राय तुम रहा दरबानी, सहज दास कैसे सतपुरुष थे कि महाराज वो आपका एक नौकर था, वो वहां पर आ गया है हमारे पास, आपका एक प्राणी। धर्म राय तुम रहा दरबानी, अमर दीप चल गए प्राणी। और कौन हुक्म करी अरज आवाजा, और कहां पठाऊं उस धर्म राजा। न्योनी कहा जी न्यू कहड़े रोक ले, आपका हुक्म हो तो महाराज कहां भेजूं। कहते हैं बही आवाज अतली अदली एक साचा, और विषय लोक जा तीनू बाचा। वियो विषय लोक है जहां पर हमारे, यहाँ पर काम क्रोध मोह अराग ईर्षा द्वेष, मार ले काट ले लूट ले खसोट ले, ये स्वर्ग में भी यही हालत है। सबसे उत्तम उपलब्धि है यहाँ की स्वर्ग, और स्वर्ग में भी एक दूसरे ने न्यू देख देख कर जड़े हैं जो कर यहाँ जल रहे हैं। कहते हैं आवाज अदल वही आवाज अदली एक साचा, एक सच्ची आवाज हुई ऊपर से कि विषय लोक जाति नू बाचा, तीनों बाचा तीनों वचन मन कर्म वचन ये तीनों तरफ से, और कई नो कहे नहीं 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 अक नहीं रखना नहीं रखना, ये तीन बार कह दिया मैंने, ले जाए इसको यहां से भगा दो यहां से। वही आवाज अदली एक साचा विषय लोक जा तीनों बाचा, फिर सहज विमान चले अधिकाई, वहां से उसका वो चल पड़ा फिर विमान यानी किस ब्रह्मंड को लेकर के चल पड़ता है। सहज विमान सहज विमान सहज दास वापस आता है वहां से। सहज विमान चले अधिकाई छिन्न में अगर दीप चल आई, वहां बात करके सतपुरुष से वापस छिन्न में एक क्षण में अपने वापस आ जाता अपने विमान सुरत के विमान के द्वारा। अब वहां पर निरंजन ने बतावा से काटते जो जो बात सतपुरुष की रुचि हुई, क्या हुई कि हम तो अर्ज करी अनरागी